दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से कोई कष्ट, कोई समस्या, कोई सीरियस प्रॉब्लम आ जाती है। उस समय ऐसी सिचुएशन से जूझने के लिए क्या कर सकते हैं? टफ कंडीशंस में कैसे खुद को मोटिवेट करें? मैं शैलेंद्र भारती आज आपको इस कथा के द्वारा यही बताऊंगा कि जीवन में आने वाली परीक्षाओं का कुछ मतलब होता है। वो किसी पर्पस से ही आपके जीवन में आती हैं। हमारी कथा भागवत पुराण से है। अर्जुन को अपनी शक्ति पर अभिमान जब होने लगा था, तब श्री कृष्ण को लगा, अगर मैंने अर्जुन को पाठ नहीं पढ़ाया तो उसकी शक्ति क्षीण हो सकती है। जी हां, बात तब की है जब महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था और संयोग से उसी समय एक और राजा रत्नपुरा के नरेश महाराज मयूर ध्वज ने भी अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा था। मयूर ध्वज का बेटा ताम्र ध्वज अपने अश्व की रक्षा कर रहा था। दूसरी ओर युधिष्ठिर के घोड़े की रक्षा अर्जुन के साथ स्वयं श्री कृष्ण कर रहे थे। श्री कृष्ण ने तब एक ऐसी लीला रची कि ताम्र ध्वज ने अर्जुन को हरा कर उसका घोड़ा ले लिया। युद्ध में अर्जुन बेहोश हो गया। जब बेहोशी टूटी तो अर्जुन अपने घोड़े को प्राप्त करना चाहता था। लज्जित होकर उसने श्री कृष्ण से सहायता मांगी। भगवान कृष्ण तो लीला रच ही रहे थे। तब माया से उन्होंने अपना और अर्जुन दोनों का वेश बदला और दोनों ब्राह्मण बन गए। इसी ब्राह्मण के वेश में वह मयूर ध्वज के महल पहुंचे। पहले तो कृष्ण ने मयूर ध्वज से सहायता का वचन ले लिया। जब मयूर ध्वज वचन से बद्ध हो गए, उसके बाद श्री कृष्ण बोले, मेरे पुत्र को सिंह ने पकड़ लिया है। कृष्ण आगे बोले कि उन्होंने बार बार प्रार्थना की कि उनके इकलौते पुत्र को छोड़कर वो उन्हें खा जाए, लेकिन वह सिंह नहीं माना। जब बहुत प्रार्थना की तो वो मान गया, पर एक अजीब सी शर्त सामने रखी कि अगर राजा मयूर ध्वज की पत्नी और बेटे राजा के शरीर का दाहिना अंग चीर कर सिंह को सौंप दें तो वह सिंह उनके बेटे को छोड़ देगा। अजीब शर्त थी। मयूर ध्वज के सामने ब्राह्मण ने सहायता मांगी और मयूर ध्वज वचन भी दे चुका था। वो अपने वचन का पक्का था। उसी समय उसने अपनी पत्नी और बेटे को बुलाया। पत्नी और बेटे दोनों उसका शरीर कैसे चीर सकते थे। दोनों ने मयूर ध्वज के बदले अपना शरीर देने का प्रस्ताव भी रखा। श्री कृष्ण नहीं माने। बोले कि सिंह ने बोला था कि केवल राजा के शरीर का दाहिना अंग ही चाहिए। पत्नी और बेटा विवश हो गए और मयूर ध्वज के शरीर को चीरना शुरू कर दिया। उस समय राजा मयूर ध्वज की बाई आंख से आंसू निकल आए। पता नहीं क्या हुआ, श्री कृष्ण ने वो दान लेने से मना कर दिया। मयूर ध्वज ने पूछा तो कृष्ण बोले कि दुखी मन से दिया गया दान कैसे स्वीकार हो सकता है। तब मयूर ध्वज ने उत्तर दिया कि आंसू निकालने का यह अर्थ तो नहीं कि दुख में ही आंसू निकल रहे हों। ऐसा भी तो हो सकता है कि बायां अंग पछता रहा हो कि दान में वो काम क्यों नहीं आया। मयूर ध्वज के शरीर का दायां अंग दान में मांगा गया था। मयूर ध्वज जी ने उत्तर तो इंटेलिजेंट दिया था दोस्तों, बस ये उत्तर था कि एकदम से पूरा वातावरण बदल गया। ब्राह्मण का भेष गायब हो गया। श्री कृष्ण अपने सौम्य रूप में सामने आ गए। हाथों में शंख चक्र गदा धारण किए श्री कृष्ण अपने सच्चे रूप में आ गए और बहुत प्रसन्न भी थे। कृष्ण ने मयूर ध्वज से वरदान मांगने को कहा। मयूर ध्वज वरदान क्या मांगता? वो सादगी से बोला कि उसने अर्जुन जैसे योद्धा को हरा दिया है और उसी की लाज रखने को स्वयं कृष्ण पधारे और इसी कारण से मयूर ध्वज को उनके दर्शन भी तो प्राप्त हुए। मयूर ध्वज का पुत्र ताम्र ध्वज कृष्ण जी का अनन्य भक्त था। युद्ध में अर्जुन को हराने के बाद पांडवों की सेना ताम्र ध्वज के लिए समस्या खड़ी कर सकती थी, इसीलिए कृष्ण अर्जुन के साथ ताम्र ध्वज और मयूर ध्वज के पास आए थे। उस समय मयूर ध्वज ने कुछ भी मांगने से मना कर दिया, ये कहके कि उसे श्री कृष्ण के दर्शन हो चुके हैं। अब संसार में ऐसी क्या बहुमूल्य वस्तु रह गई कि जिसकी वो कामना करे? पर यह लीला और माया केवल मयूर ध्वज के बेटे ताम्र ध्वज के लिए नहीं की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य तो अर्जुन को सबक सिखाना था। ये सब देखकर अर्जुन को बात समझ भी आ गई थी। अर्जुन उसी समय श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया। वो समझ गया था कि यदि उसे अपनी शक्ति को चरम पर रखना है तो कभी भी ये सोचकर न बैठे कि वो सबसे बड़ा महान है। कभी न कभी कोई ऐसा योद्धा, कोई ऐसा कॉम्पिटिटर आएगा जो आपको धूल चटा सकता है। इसी बात के लिए ये अद्भुत कथा मोटिवेट कर रही है दोस्तों कि संघर्ष तो हमेशा चलता ही रहता है। आपको यदि लगता है कि आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ ठीक ठीक बढ़िया बढ़िया ही चलता रहे, तो शायद ऐसा तो होगा नहीं दोस्तों। रोज नई समस्याएं, रोज नई प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी, जैसा कि इस कथा में हुआ। आप इस बात को समझ करके अपने आप को मोटिवेट भी कर सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेन चैलेंज से पहले भगवान आपको वार्निंग दे रहे हैं कि आपको अपने काम, अपने कौशल और अपने टैलेंट पर ज्यादा मेहनत करनी है। अगर कोई बहुत बड़ा युद्ध होता, जैसा कि महाभारत का युद्ध, उसमें यदि अर्जुन हार जाता तो पांडव भी हार जाते। ऐसे ही लाइफ में कई बड़ी चुनौतियां आती हैं दोस्तों, और उसके आगे पीछे कई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी चलती ही रहती हैं। यदि एटीट्यूड ही ऐसा बना लें कि ये सब तो होगा ही, और बजाय रोने या परेशान होने के आप उसका सॉल्यूशन ढूंढने लग जाएं, तो वो समस्या फिर उतनी बड़ी नहीं रह जाती। इस मोटिवेशन में सबसे बड़ी बात ये होती है दोस्तों कि आप भगवान को अपने साथ ही पाते हैं। यदि वो आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो बचाएंगे भी वही, इस बात का आश्वासन भी मिलेगा, पर तभी जब आप लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए तैयार हों। है ना ये अच्छी बात दोस्तों? इससे यही सीख मिलती है कि हमें जीवन के सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उसके साथ जीना चाहिए, फाइट के लिए हर पल हर दम तैयार रहना चाहिए, फिर तो ईश्वर आपके साथ ही है। इसी के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।